बीबीसी इंडिया बोल तारीख 17 जून दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। खेती किसानी में लगातार घाटा, कर्ज का बढ़ता बोझ और आत्महत्या करते किसान, क्या आधुनिक भारत में किसानों की किसी को चिंता नहीं? मध्य प्रदेश में पुलिस गोलीबारी में किसानों की मौत के बाद क्या नरेंद्र मोदी सरकार जागेगी? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में अलग राज्य को लेकर जारी आंदोलन हिंसक हो गया है। आंदोलनकारियों ने आज एक मार्च निकाला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें हुई। प्रदेश सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की अपील की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दार्जिलिंग से रवि प्रकाश।
दार्जिलिंग में आज हुई हिंसा में एक बंद समर्थक की मौत हो गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पुलिस फायरिंग में पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अनुज शर्मा ने बीबीसी से बातचीत में पुलिस फायरिंग से इनकार किया है। उन्होंने झड़पों के दौरान सिर्फ एक आम आदमी के मारे जाने की पुष्टि की। एडीजी ने कहा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लोगों ने ही पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। इसमें इंडियन रिजर्व बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट किरोन तमांग बुरी तरह घायल हो गए। 35 दूसरे पुलिस जवान और अधिकारी भी घायल हुए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरे संगठनों ने आज डेस्टिनेशन पाटलेबास नाम से विरोध मार्च निकाला था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति की अपील की है।
जानकारी दे रहे थे रवि प्रकाश। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान से मिली रिपोर्टों के मुताबिक एक सैन्य छावनी पर हुए आंतरिक हमले में कम 3 अमरीकी सैनिक घायल हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक मजार शरीफ के शाहीन कैंप में एक अफगानी सैनिक ने गोलियां चला दी। राजधानी काबुल में अमरीकी सेना ने कहा है कि उसे इस घटना की जानकारी है। एक हफ्ते पहले पूर्वी अफगानिस्तान में एक अफगानी सैनिक के हमले में अमरीका के 3 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। क्यूबा की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यात्रा और व्यापार संबंधी कुछ प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने की आलोचना की है। पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन ने इन प्रतिबंधों में ढील दी थी। क्यूबा का कहना है कि उसकी संप्रभुता को ठेस पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा मूल के अमरीकियों को संबोधित करते हुए नीति में बदलाव को सही ठहराया है। ट्रंप ने कहा,
Our policy will seek a much better deal for the Cuban people.
हमारी नीति क्यूबा के लोगों और अमेरिका के लिए कहीं बेहतर समझौता तैयार करने की है। हम नहीं चाहते कि अमेरिकी डॉलर एक ऐसे सैन्य एकाधिकार का पोषण करे जो क्यूबा के नागरिकों का उत्पीड़न करता है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान में अमरीकी नौसेना के एक पोत की एक मालवाहक जहाज से हुई टक्कर के बाद 7 अमरीकी नौसैनिक लापता हैं। अमरीकी पोत यूएसएस फिट्ज़जेरल्ड के कमांडिंग अधिकारी समेत 3 घायलों को जापान के एक हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया और उनका इलाज किया जा रहा है। ये टक्कर कैसे हुई, इसकी जाँच की जा रही है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने पूर्व चांसलर हेलमुट कोल को श्रद्धांजलि दी है। कोल का 87 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। कोल 16 साल तक जर्मनी के चांसलर रहे थे। मर्केल ने कहा,
हेलमुट कोल वार एन ग्रोसर डॉयचर उंड एन ग्रोसर यूरोपियर।
हेलमुट कोल के निधन की खबर ने हमें स्तब्ध कर दिया है। हम महसूस करते हैं कि एक जीवन थम गया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन को इतिहास याद रखेगा। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच कल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये दोनों टीमें 10 साल के बाद आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में मुकाबला करेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी लीग राउंड में भी दोनों टीमों के बीच मैच हुआ था। तब भारत ने पाकिस्तान को 124 रन से मात दी थी। रविवार को होने वाले मैच के पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि फाइनल मैच को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इसे एक उम्मीदवार पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, भारत में किसानों की मौजूदा हालत पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक ओर खेती किसानी में लगातार घाटा हो रहा है और दूसरी ओर किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है मानो चारों तरफ से पड़ती मार की वजह से किसान अधमरा होकर औंधे मुंह जमीन पर पड़ा है। पहले महाराष्ट्र में हमने देखा अपना विरोध जताने के लिए किसानों ने सड़कों पर दूध बहाया, फल सब्जियां फेंकी, और फिर मध्य प्रदेश में भी हमने देखा किसान सड़कों पर उतरे, उन पर गोलियां चली, खून किसान का बहा, जान भी किसान की ही गई। इन घटनाओं से पहले हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा मुंह में चूहा दबाए, पीठ पर चाबुक की मार खाते, हाथ में मरे हुए इंसान की खोपड़ी लेकर भरी दोपहरी में तपती सड़क पर नंगे होकर तमिलनाडु के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये तमाम दृश्य और ये तमाम घटनाएं एक सवाल खड़ा करती हैं, वो सवाल ये कि क्या आधुनिक भारत में, डिजिटल इंडिया में किसी को किसानों की चिंता है भी या नहीं, और उसी से जुड़ा सवाल ये कि हालिया घटनाओं और किसानों की मौत के बाद क्या नरेंद्र मोदी सरकार जागेगी। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं 1811 7000 और 1811 7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह, स्वागत आपका, और स्वागत हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो हमें रेडियो के साथ साथ bbcindi.com और अपने मोबाइल फ़ोन पर, फेसबुक पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। और इससे पहले कि हम श्रोताओं से बात करें, हरवीर जी आपसे जानना चाहेंगे, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे हों और उनसे जुड़ी सरकारी योजनाओं पर आपकी बड़ी पैनी नज़र रहती है, कहाँ गड़बड़ हो रही है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
एक्चुअली देखिए कि जो किसानी का मसला है उसको लेकर के लगता है कि सरकार की नीतियां नाकाम हो गई हैं, और जो नीति निर्धारक हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है। तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं कि हम लोग किसानों की आय दोगुना कर देंगे, हम जो है उनको बीमा दे देंगे, हम उनको तमाम सारी बातें जो की जा रही है, कर्ज दे देंगे, लेकिन जो कर्ज है वही फांसी का फंदा बन गया है। तो सवाल इस बात का है कि जब तक किसान की आमदनी बढ़ाने का कोई ज़रिया नहीं होगा, और आमदनी कैसे बढ़ेगी, जब किसान उत्पादन करता है उसी वक्त आप सस्ता आयात करते हैं, जब किसान उत्पादन करता है उस वक्त आप बाज़ार में खरीदने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकर के जाते हैं, जब किसान को सूखे के जरिए एक प्राकृतिक आपदा के रूप में मार झेलनी पड़ती है, तब आपने अभी जैसे जिक्र किया शुरू में कि तमिलनाडु के किसानों ने किस तरीके से यहाँ पर सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी बड़ा नुमाइंदा इस सरकार का उन तक नहीं पहुँचा। प्रधानमंत्री कार्यालय ले जाने की उनको बातें की गई, लेकिन जब वहाँ उनको झूठ मिला तो उन्होंने नग्न प्रदर्शन करने की कोशिश की। तो ये जो बेचारगी और मैं कहूँ लाचारगी जो है किसान को जहाँ ले गई है, उसके बाद अब लगता है कि किसान ने जो किया, जो जिस तरीके से वो सड़कों पर आया, और जो हमने मंदसौर में देखा, जो हमने महाराष्ट्र के नासिक से शुरू होकर के किसान क्रांति को देखा, उससे एक बात लगती है कि शायद किसान का नीति निर्धारकों और राजनीतिक पार्टियों और सरकारों से भरोसा उठ गया है, और उसको लगता है कि अब मुझे एकजुट होकर के इन सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि मेरे लिए वो सोचें।
हरवीर जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले कि देखते हैं 1811 7000 और 1811 7001 ये टोल फ्री नंबर है हमारे, इस समय कौन श्रोता कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं।
जी सर नमस्कार।
जी नमस्ते।
हाँ जी, दिल्ली बिश्नोई बोल रहा हूँ, यजुनगर जिले राजस्थान से।
राजस्थान से बोल रहे हैं, रखें अपनी बात कार्यक्रम में, स्वागत है आपका।
हाँ जी, किसानों की दशा ये नेता कभी नहीं सुधार सकते सर, अपने देश के जो राजनेता है कभी सुधार नहीं सकते, किसान की कैसे सुधरेगी ये बताऊं मैं आपको। ये आज सरकार ने जो सरसों का भाव तय किया है 3750 रुपए, लेकिन बाजार में सरसों बिक रहा है 3000, गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है किसान से, व्यापारी से वही शाम को सरसों सरकार खरीद रही है। हेलो
जी, विष्णु जी रखें अपनी बात आगे जारी रखें।
हाँ, तो वही सरसों जो 3750 का भाव गवर्नमेंट ने किसान से खरीदनी चाहिए, वो 3000 व्यापारी खरीदता है, व्यापारी से शाम को वही सरसों किसान सरकार खरीदती है, तो इसमें कैसे सुधार होगा किसान का। जी बताइए ना।
कार्यक्रम में आपकी बात शामिल हुई, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं, सुनते हैं कौन अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
हाँ जी, हेलो
जी, कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं इस समय?
जी, मैं रामचंद्र वाराणसी से बोल रहा हूँ।
रामचंद्र जी वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि पिछले काफी वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि किसानों पर काफी चर्चाएं होती रहती हैं, परंतु कोई भी महत्वपूर्ण योजना या कोई भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती है, केवल चर्चाएं ही होती हैं। किसान की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और किसान जो है आंदोलन के लिए आज अपना जो है पूरी तरीके से सक्रिय है, बेचारे मजबूर है आंदोलन करने के लिए। हेलो
जी, जी
हाँ जी, किसान एकदम विवश हैं कि वो अपना बात रखने के लिए सड़क पर उतरना हो रहा है। वो अपने आप को मीडिया में भी चीजें इस तरह से प्रदर्शित नहीं हो पा रही हैं कि किसानों के दुख को और कष्ट को वो ज्वलंत मुद्दा बनाकर प्रदर्शित कर सके।
आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई, और श्रोताओं को भी मौका दीजिए इस समय। और कौन श्रोता हमसे शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में? कौन साहब, कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं? हेलो,
हेलो
जी, कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं?
आज मैं संजय बोल रहा सर, गांव गंगा टेढ़ी, जिला करनाल हरियाणा से।
करनाल हरियाणा से संजय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
हाँ सर, ये सर एक विडंबना है कि हमारे देश में कि सबसे ज्यादा रोजगार खेती देती है और कृषि से जो मतलब लोग जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी किसी भी सरकार का हाल देखिए कि केवल योजनाएं कागजों में बनती हैं, वो हकीकत में कभी कंप्लीट पूरी नहीं होती। और जब तक समस्या ये मतलब योजना केवल ऐसे बनती रहेंगी तो सर किसान का कभी भला होने वाला नहीं है।
ऐसा क्यों लगता है संजय आपको, आप इतने निराश क्यों लग रहे हैं सरकार की योजनाओं से?
इतने निराश तो सर ये है कि जो वादे करते हैं, जो वादे तो मतलब बड़े बड़े वादे करते हैं सभी पार्टियां, लेकिन जब हकीकत में जब सरकार बनती है तो उस वादों को पूरा नहीं करता। तो भारत मतलब जो आज वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान में सरकार है, इसने स्वामीनाथन रिपोर्ट की मतलब वो की थी कि हम आने के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन वो एक रिपोर्ट 2007 में आई थी, आज तक सरकार उसको लागू नहीं कर रही। तो क्यों नहीं कर रही? इतने साथ इतने वेतन आयोग बनते हैं, वो हर 5 साल के बाद लग रहे हैं, लेकिन किसान को एक वो इतना नहीं मिल रही है, जो उसका लागत का मूल्य वो भी नहीं मिल रहा। आलू का क्या भाव है, जैसे टमाटर का क्या है, तो वही बात आई जो सरकार ने कहा था सर, वो आयात कर लेती है और जो किसान के जो मार्केट रेट है उसको कुछ नहीं मिलता, तो उस हताशा में किसान क्या करेगा? मतलब वो कर्ज से परेशान, वो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। तो मतलब कि सरकार बिल्कुल नींद से जाग ही नहीं रही, सोच भी नहीं रही है।
संजय जी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। और श्रोताओं को इससे पहले हम शामिल करें, 3-4 बातें निकल कर आई हैं हरवीर जी, मोटी मोटी। एक तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, एक श्रोता कह रहे थे कि 3700 रुपये की सरकार ने घोषणा की, उन्हें 3000 रुपये मिला प्रति क्विंटल। एक दूसरे श्रोता कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आपने लागू क्यों नहीं की। तीसरे श्रोता कह रहे थे रोजगार की बात है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। ये कैसे देखते हैं आप, ये कहां पर ये सब गड़बड़ झाला प्रतीत हो रहा है?
देखिए, किसान जो है वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है, लेकिन सरकारें दाम तय करती हैं, करीब 22-23 ऐसे उत्पाद हैं जो जिनका MSP तय होता है, और ख़रीदारी मुश्किल से 3-4 उत्पादों की करते हैं, और उसमें भी कुछ राज्य हैं जहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बाकी जगह नहीं है। अब ये जैसे इन्होंने सरसों की बात की, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। अभी सरकार ने पिछले साल जब हमारे यहाँ दालों के कई दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए MSP बढ़ा दिया है, और ये भी कहा कि हम लोग एक बफर स्टॉक बनाएंगे किसानों से ख़रीदारी करके। लेकिन जब किसानों ने दालों का बेहतर उत्पादन किया, एक तो आपने आयात बंद नहीं किया, दूसरे क्या किया कि राज्यों से दालें खरीदी ही नहीं की, जिस दाल का MSP 5000 रुपये के आसपास है उसके लिए किसान को 3000 रुपये भी नहीं मिले। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब उसने ज़्यादा उत्पादन किया, क्योंकि हम लगातार दाल के घाटे में थे, उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सरकार नहीं जागी और उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक ये जो करनाल से जो किसान बोल रहे थे, करनाल के आसपास बासमती काफ़ी बड़े पैमाने पर पैदा होता है, नई वेराइटीज़ आई हैं, करीब 4500-5000 रुपये तक धान का दाम मिलता था 3 साल पहले, पिछले 2 साल में ये दाम गिर करके 2000 रुपये से भी नीचे आ गया। आप समझ सकते हैं उस किसान की व्यथा, जिसने 3 साल पहले 5000 रुपये में अपना उत्पाद बेचा और आज उसको 2000 रुपया भी नहीं मिल रहे हैं। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जब बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय किसान आयोग जो UPA गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें MS स्वामीनाथन की जो बाकी सिफारिशें थी उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश मानी गई कि जो फसल की लागत है उस लागत के ऊपर 50% प्रॉफिट जोड़ करके दाम तय किया जाएगा। अब उसमें यह है कि पिछली गवर्नमेंट ने तो उस वक्त उस पर अमल नहीं किया, लेकिन जो अभी सरकार सत्ता में है, इनके जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त हर रैली में लगभग 90% जो सभाएं की देश भर में, उसमें कहा कि हम एम एस स्वामीनाथन के हिसाब से दाम तय करेंगे। लेकिन जब सरकार में बहुमत मिलकर के सरकार सत्ता में आई तो ये लोग उस सिर्फ वादे को भूले ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट दे करके ये तय किया, बताया कि हम लोग ये सिफारिश के आधार पर दाम तय नहीं कर सकते। और इसका मतलब है जो किसानों के साथ जो एक वादा खिलाफी जो हुई उसने उनको ज़्यादा तोड़ा है, क्योंकि इससे उम्मीद भी उनको आगे नहीं दिख रही है।
चर्चा हम जारी रखेंगे स्वामीनाथन आयोग के बारे में भी और बाकी पहलुओं पर भी बात करेंगे। इस समय कौन श्रोता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? हेलो,
हेलो
जी, कौन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? बहुत स्वागत है आपका।
जी सर नमस्कार, मैं गाँव खेदर जिला हिसार हरियाणा से बोल रही हूँ, रिमन लैंड
हिसार हरियाणा से। बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। महिला श्रोताओं के टेलीफोन ना के बराबर आते हैं इंडिया बोल में। चिट्ठियां बहुत लिखती हैं लेकिन इंडिया बोल में उनकी उनका शामिल होना ना के बराबर होता है। बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
जी सर, मेरा कॉल भी पहली दफा लगा है और एक किसान की बेटी होने के नाते मैं कहूँगी आपने किसानों का विषय रखा है।
जी रखें अपनी बात।
जैसे आज एक किसान जिस फसल का भाव दिखता है उसकी तरफ दौड़ लेता है,
जी,
मैं उसको भी थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि फसलों की जो अदला बदली है उसको करता रहे। और लेकिन सरकार को भी ये कहना चाहूंगी कि मंडी के भाव उस टाइम पर तो ऊपर उठ जाते हैं जिस टाइम पर उसकी फसल खेतों में नहीं होती
जी।
और उस टाइम पर बहुत ज्यादा उन भावों में गिरावट आ जाती है जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है और वो बाजार में लेकर के जाता है।
बिल्कुल, और किसान की फसल ही नहीं पकती, फसल के साथ किसान के अरमान भी पकते हैं। ये बताइए कि क्या समझ में आता है आपको कि सरकार को क्या करना चाहिए कि फसल के साथ किसानों के अरमान मुरझाएं नहीं पकें?
सर जैसे अगर एक किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाता है तो उसको भाव मिलता है 1400-1500 प्रति क्विंटल गेहूं का, लेकिन वही गेहूं यदि किसान बीज के लिए खरीदता है तो उसको 2000 प्रति क्विंटल मिलती है।
और तो ये भी बताइए सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। ये बताइए कि किसान होने के नाते ऐसे हालत में आपने देखा है अपने घर में किसान के पास क्या रास्ता बचता है, क्या करना चाहिए किसान को?
जी सर, किसान को तो मैंने बोला कि जो एक फसल के पीछे ना दौड़े और जो भाव देख रहा है उसकी तरफ ना दौड़े। जैसे पीछे हमने अरहर का भाव देखा तो हम अरहर की तरफ चल पड़े। यही है कि जिस फसल को वो खेत में बो रहा है वो ये देखना चाहिए कि किस फसल की अब मांग है, उसी तरफ जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया, आगे भी आप इंडिया बोल में अपनी भूमिका दर्ज कराइएगा, फोन करते रहिएगा, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं इस समय।
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
हाँ सर नमस्ते।
नमस्ते, बोलिए।
मैं सर सत्यनारायण वैश्य सर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, सिंगरौली जिले से।
सत्यनारायण जी मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला अंचल से बोल रहे हैं आप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, रखें अपनी बात।
हाँ सर, एक कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी अनाज है सर ना सबका मतलब एक निश्चित रेट होना चाहिए
जी,
ताकि किसानों को लाभ मिले।
और बताइए।
हाँ, और सर कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्ति होनी चाहिए हर पंचायत में एक कम से कम।
अच्छा, ये बताइए कि सत्यनारायण जी एक बात ये भी बताइए कि इतने सालों से आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपको कुछ लगता है कि अब तक आज़ादी के बाद तमाम सरकारें हुई हैं खेती किसानी को लेकर कुछ ठोस कदम किसी सरकार ने उठाया है?
सर यहाँ जमीन वमीन की कुछ जांच की कोई सुविधा नहीं होती गाँव में कि कौन सी फसल लगाएं, कोई वैज्ञानिक यहाँ कोई बताने नहीं आता क्या कमी है मिट्टी में, ये सब इस पर ध्यान देना चाहिए।
बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में आपकी बात शामिल हुई। और कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं, कौन है हमारे साथ इस समय? हेलो हेलो
हेलो,
कौन 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 श्रोता हमारे साथ हैं इस समय? लगता है बात हो नहीं पा रही। हरवीर जी आपके पास लौटेंगे। ये एक श्रोता थे जो कह रहे थे कि अभी सरकार दाम तय क्यों नहीं कर देती कि साहब फसल का जो दाम है वो ये दाम है साहब, 2000 रुपये क्विंटल है या 3000 रुपये क्विंटल है या 1200 रुपये क्विंटल है, उसी हिसाब से बिक जाए तो सिरदर्दी ख़त्म हो जाए?
नहीं, एक्चुअली देखिए समस्या क्या है कि दाम कुछ चीज़ों के तय होते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ दाम तय कर देने का नहीं है, सवाल है किसान को वो मार्केट में उसकी उपज को कौन खरीदेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, जैसे पहले एक श्रोता ने भी इस बात को मेंशन किया था कि हमारी जो मंडियां हैं उनमें जो आड़ती हैं वो बड़े पैमाने पर बहुत ही उस तरीके के बिचौलिए हो गए हैं जो मोटा मुनाफा कमाते हैं, और जो हमारी सरकारी मशीनरी है वो भी उनके साथ खड़ी हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि इस बार बड़े पैमाने पर किसानों को धान का पूरा MSP मंडियों में भी नहीं मिल पाया, हरियाणा पंजाब में भी नहीं मिल पाया, और रीज़न ये था कि तमाम सारी कंडीशन लगा करके उनको बिलो MSP दाम दिया गया। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात होती है कि जब सरकारी मशीनरी भी किसान के साथ खड़ी नहीं होती। दूसरी बात है कि जैसे आपका बिहार है, मंडी नहीं है, मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा हिस्सा है जहाँ मंडियाँ नहीं है, ईस्टर्न UP का बड़ा हिस्सा,
लेकिन महाराष्ट्र में तो काफ़ी,
महाराष्ट्र में काफ़ी विकसित है, लेकिन महाराष्ट्र की दुविधा दूसरी है। आप देखिएगा महाराष्ट्र में जैसे हमने बात की, वहाँ गेहूँ चावल पैदा उस तरह से नहीं होता, वो लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ गए हैं, वो कॉटन की तरफ गए हैं,
वो नगद फसलें ज़्यादा,
बिल्कुल दलहन की तरफ गए हैं, और उसमें रिस्क बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। अब दालें देखिए, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दालों का उत्पादन हुआ लेकिन सरकारी खरीद नहीं हुई। आप कपास को देख लीजिएगा उसी तरीके से, अंगूर किसान को 12 से 15 रुपया में अपना अंगूर बेचना पड़ा, अनार के किसान को दाम नहीं मिला।
अब वही अंगूर वही अनार आप लेने जाते हैं तो अनार आपको 100-150 रुपये से कम में नहीं मिलता, और अंगूर का भी वही हाल है।
अब आप देखिए कि जिस किसान को 12 रुपया मिले, और आगे बताऊं कि पिछले साल महाराष्ट्र में जो दूध के किसान थे उनको 15 से 17 रुपये लीटर में दूध बेचना पड़ा।
हरवीर जी, ये समस्या की बात है, इसमें सरकार की भूमिका और सरकार को क्या करना चाहिए जो उसने नहीं किया उस पर हम लौटेंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं इस समय 1811-7000 और 1811-7001, ये दो हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इस समय कौन श्रोता कार्यक्रम में हमसे शामिल हो रहे हैं, कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं?
हाँ नमस्कार सर
जी, नमस्ते,
मैं अली मोहम्मद बात कर रहा, ग्राम तावली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर UP से,
उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
लेकिन फिलहाल मैं यहाँ बेंगलोर से 150 किलोमीटर आगे कोलार डिस्ट्रिक्ट में हूँ
जी। रखें अपनी बात, रखें अपनी बात।
और 7 साल से मैं आप ये इंडिया गोल को सुन सुन के फोन लगाता थक गया, आज पहली बार मेरा फोन लगा।
अब आपका फोन लग गया है तो रखें अपनी बात, बहुत स्वागत है, मुद्दे पर आइए।
अभी बात ये है कि जब ये इलेक्शन होने से पहले सरकार वादा कर रही थी कर्जा माफ कर दिया जाएगा किसानों का, अब ये किसानों ने अपना कर्ज जो है वो भी जमा नहीं करा और इनका कर्ज भी माफ नहीं हुआ, तो आगे इनके ऊपर जो है तो पालन की ब्याज दर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इनके लिए और ज्यादा मुश्किल बन जाएगा।
बिल्कुल, इस कर्ज माफी के पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे इस समय। और कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं? हेलो,
हाँ मैं चौधरी रंगलाल सिंह नमोरिया बोल रहा हूँ, जूनी राजस्थान से।
बहुत स्वागत है आपका चौधरी साहब, रखें अपनी बात।
हाँ ऐसा है जी, किसानों के लिए एक तो सस्ता बीज होना चाहिए, सरकार की तरफ से मुफ्त बीज मिलना चाहिए
जी, और बताइए।
खाद बीज ये मुफ्त मिलनी चाहिए, और एक पानी है ये एकदम निःशुल्क मिलना चाहिए, ताकि अपने हिंदुस्तान का राजस्थान का किसान सम्मिलित हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, वरना बहुत घाटे में जा रही है खेती।
चौधरी साहब ये बताइए कि भारत सरकार अभी किसानों को जो सुविधाएं दे रही है, जो तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं, वो काफी नहीं लगती हैं आपको?
ऐसा जी, द्रास्टल पर तो कोई ऐसी आई नहीं है, कोई सब नाम लेते किसान को, कुछ अभी तक प्रत्यक्ष में कुछ मिला नहीं। अब जैसे मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं की है, और पूरे देश में महाराष्ट्र में टमाटर खिंडा रहे हैं, दूध खिंडा रहे हैं, ये राजस्थान में अब तक का दाम हो रहा है 3 दिन से।
आप अपने झुंझुनू की बात बताइए, आसपास
वहाँ पानी बहुत गहरा है,
तो क्या सरकार ने पानी की व्यवस्था नहीं कराई वहाँ पर?
बहुत गहरा पानी है, तो पानी को बिजली को सरकार को एकदम मुफ्त में देनी चाहिए।
अच्छा,
और खाद फ्री देनी चाहिए, वरना यहाँ का पानी इतना महंगा हो जाता है, उसी में पैसा चला जाता है किसान का
जी। कार्यक्रम में आपकी बात शामिल हुई, बहुत शुक्रिया।
कहता है नहर का था हमारे सावा का, तो उन्होंने करा था, वो अभी तक पास नहीं हुई है वो।
अच्छा, नहर भी पास नहीं हुई है, पानी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से फसल भी आपकी अच्छी नहीं हो रही है, ये आपकी शिकायत थी। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। अगले श्रोता हमसे कौन जुड़ रहे हैं? हेलो
हेलो
जी, कौन शामिल हो रहे हैं हमसे? कौन?
इंद्र प्रकाश यादव सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से यादव जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
सर मेरा जो मानना है, ये सरकार किसानों को ही मजबूर करती खेती छोड़ने के लिए। मतलब 90 लाख लोग लगभग हर साल खेती छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की योजनाएं इस तरह से लागू करती, इस तरह से वो करती, जैसे कागजों में 9 लाख करोड़ का लोन बांटती है, लेकिन जो रियल लेवल पे है, जो वाकई वास्तविक स्थिति है, वो किसानों को नहीं किसी और को भी तमाम मतलब फर्जी कागजात लगा के लोन ले लेते हैं। दूसरी चीज जो है, सबसे बड़ी चीज, सरकार जो योजनाएं कागजों पर लाती है उसको ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरह से लागू करे, इसका इंस्पेक्शन हो कि क्या वाकई योजनाएं लागू हो रही या नहीं हो रही।
बहुत शुक्रिया। एक एक आखिरी श्रोता को हम शामिल करेंगे, उसके बाद हरवीर जी के पास आएंगे। कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं इस समय?
कृष्ण कुमार भगत बोल रहे हैं, उत्तराखंड से।
उत्तराखंड से भगत साहब स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
सर ऐसा है कि ये किसानों के लिए जो दोहरी नीति अपना रही है सरकार, और अभी हमने सबने देखा कि मंदसौर में उन्होंने उन पर एक तरफ तो गोली चलाई गई और दूसरी तरफ वो अब भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं खुद सर एक सीमांत किसान हूँ और किसानी के साथ साथ एक थोड़ा बहुत लेखन से भी जुड़ा हूँ, और इसी विषय पर मैंने क्रांति के मुख पर एक कहानी संग्रह लिखा है।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आपकी बात शामिल हुई। समय कम है, अब हम श्रोताओं को शायद शामिल ना कर पाए। आपके पास लौट रहे हैं हरवीर जी, असल समस्या क्या है इस देश में कि अन्नदाता उसकी अपनी हाथ, उसकी अपनी झोली खाली रह जाती है जो सबका पेट भरता है?
देखिए एक्चुअली उसकी जो आमदनी है वो नहीं बढ़ रही है, ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है।
और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं, एक तो बढ़ती हुई लागत। आप देखिए अब से 4 साल पहले 5 साल पहले जो डीजल का दाम था वो क्या था, या फर्टिलाइज़र का दाम क्या था, या बिजली की दरें क्या थी, ये ऐसी चीज़ें हैं। बीज का दाम क्या था,
इसमें सरकार तो की ये क्या होनी
इसमें
चाहिए?
सब जगह सरकार की भूमिका है। एक तो आप बार बार जब सूखा पड़ा तो कहा कि किसानों को डीजल पर सब्सिडी देंगे, उसके कोई मायने नहीं होते, इस ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी चलती नहीं है ठीक से। दूसरे ये है कि उर्वरकों के दाम लगातार बढ़ाए जाते रहे हैं, और सब्सिडी को घटाने की एक सब्सिडी को ऐसा एक बुरा शब्द मान लिया गया, उसको आप घटाते हैं, फर्टिलाइज़र का दाम ऊंचा रखते हैं। बीज जो जिस तरह से अभी कुछ किसान कह रहे थे, एक तो पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला गया है और वहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
मैं फिर सरकार की बात करूँगा,
ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है।
कहाँ सरकार जो है, सरकार दर सरकार लगातार चूक पे चूक करती जा रही है कि ये समस्या आज़ादी के इतने साल बाद भी किसान जो है जस का तस है।
देखिए प्राइसिंग पॉलिसी कुछ नहीं है। एक बात आप बताइए, सरकार का सबसे बड़ा फोकस रहता है उपभोक्ताओं के ऊपर, और जिस तरीके से महंगाई को काबू करने के लिए आप MSP पर अंकुश लगाते हैं, आप सस्ता इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें नतीजा ये होता है कि घरेलू मार्केट में दाम कम होते हैं। दूसरे किसान की जो सबसे मजबूरी ये है कि वो एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेन नहीं कर पाता। ज़्यादातर उत्पादों के मसले में यही होता है कि उसके पास जो है भाव के साथ नेगोशिएट करने का कोई मौका नहीं होता। एक उदाहरण मैं दूंगा, जहां उनके पास मौका आया, जहां अच्छे कोऑपरेटिव सक्रिय थे, जैसे दूध में अमूल का एक उदाहरण आपके सामने है, करोड़ों किसान उस GCMF से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में अगर आप दूध का दाम 50 रुपये लीटर देते हैं तो 40 रुपया किसान को मिल रहा है वहाँ पर। तो उसमें
एक, एक आखिरी सवाल जिसका संक्षेप में जवाब जानना चाहेंगे हरवीर सिंह जी, किसान अपने हाथ मजबूत कैसे करे कि उसे सरकार के आगे हाथ ना फैलाने पड़े?
मेरा मानना है कि किसानों को संगठित होना चाहिए और प्रोड्यूसर्स कंपनी या कोऑपरेटिव बनानी चाहिए, और पूरे देश के किसानों को अपने संगठन एक साथ जोड़ करके, एक साथ मिलकर के सरकार और खरीदार उनके साथ बार्गेन करके नेगोशिएट करना चाहिए, और अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए, न कि सिर्फ सरकार की तरफ देखें कि वो उसके हित में क्या करने जा रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो एक कर्ज वाला मसला क्योंकि बार बार आता है, ये बिल्कुल ठीक है कि बार बार कर्ज माफ़ी से समस्या का हल नहीं होगा। अगर किसान की आमदनी बढ़ेगी तो शायद वो कर्ज चुका पाएगा, और इस वक्त जो परिस्थिति है उसमें मैं कर्ज माफ़ी की ज़रूरत है उसका समर्थन करता हूँ। मेरा मानना है कि ये राहत सरकारों को उनको देनी पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं रात के 8 और वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का शुक्रिया और माफ़ी चाहेंगे हमेशा की तरह उन तमाम श्रोताओं से जिन्हें हम इस कार्यक्रम में चाह कर भी शामिल नहीं कर सके। वरिष्ठ पत्रकार हरदीप सिंह जी, आप स्टूडियो आए, कार्यक्रम को, चर्चा को सार्थक बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं को हमसे और हमें श्रोताओं से जोड़ रहे थे शीशे के उस पार बैठे स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम। अगले शनिवार एक और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के साथ इंडिया बोल में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल संदीप सोनी को दीजिए इजाजत।